आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
नमस्कार, SBS हिंदी के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। मैं हूँ शशि कुमार और प्रस्तुत है 9 सितंबर 2026 के मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले और जवाबी हमले शुरू हुए हैं, जिससे 6 महीने से अधिक समय से जारी युद्ध में दोनों देश एक बार फिर सीधे टकराव की ओर बढ़ते दिख रहे हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसके युद्धपोतों पर हुए ताजा हमलों के जवाब में उसने ईरान के 5 तेल टैंकरों को नष्ट कर दिया है। वहीं तेहरान ने जॉर्डन में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिकी सेना ने शनिवार को भी ईरान के 3 तेल टैंकर नष्ट किए थे। अमेरिका के मुताबिक ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी विमान वाहक पोत और एक विध्वंसक युद्धपोत पर हमला करने की कोशिश की थी। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका ईरान के हमलों का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। वहीं निर्माण क्षेत्र की यूनियन CFMEU के मुख्यालय पर अंतर्राज्यीय पुलिस छापेमारी के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पुष्टि की है कि विक्टोरिया और क्वींसलैंड के डिटेक्टिव्स ने आज सुबह दोनों राज्यों में कई जगहों पर तलाशी वारंटों पर कार्रवाई की, जिनमें ब्रिस्बेन के उपनगर बोबेन हिल्स स्थित CFMEU के कार्यालय भी शामिल हैं। विक्टोरिया में 46 और 43 साल की उम्र के 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया है और उन पर ऐसे आरोप लगाए गए हैं जिनका आज की जाँच से सीधा संबंध नहीं है। वहीं 47 वर्षीय एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है जो अभी पुलिस हिरासत में है। CFMEU के एक प्रवक्ता ने कहा कि यूनियन जांच में पुलिस के साथ पूरी तरह सहयोग करेगी। दूसरी तरफ अमेरिका ने लेबर सरकार की उन योजनाओं को लेकर चिंता जताई है जिनके तहत डिजिटल ड्यूटी ऑफ केयर नियम लागू किए जाएंगे। इन नियमों के तहत सोशल मीडिया फीड को तय करने वाले एल्गोरिदम से यूजर्स को बाहर निकलने का विकल्प मिल सकेगा। इस कानून का उद्देश्य युवाओं को हानिकारक ऑनलाइन सामग्री से बचाना है। नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर $10 करोड़ से ज्यादा का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने बयान जारी कर कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापारिक साझेदार देशों को डिजिटल सेवाओं पर कर या जुर्माना लगाने के खिलाफ स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने ऐसे कदमों को जबरन वसूली बताया है। हालांकि प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीसी ने व्हाइट हाउस की नाराजगी को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। वहीं आइसलैंड के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को तलब किया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा नक्शा साझा किया जिसमें आइसलैंड को कथित तौर पर अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर साझा की गई तस्वीर में कनाडा, ग्रीनलैंड, मैक्सिको और आइसलैंड के पूरे भूभाग को अमेरिकी ध्वज के रंगों में दर्शाया गया था। आइसलैंड पहले से ही ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर नियंत्रण हासिल करने की बार बार दी गई धमकियों से चिंतित रहा है। ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है जो आइसलैंड से 300 किलोमीटर से भी कम दूरी पर स्थित है। इसके अलावा कनाडा के साथ ट्रंप के व्यापारिक टकराव ने भी आइसलैंड की चिंताओं को बढ़ाया है। आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टीन फोस्टा दोतीर और विदेश मंत्री थोरगेरदूर कैटरीन गुन्नार्स दोतीर दोनों ने कहा है कि इस तस्वीर से दिया गया संदेश बेतुका है और यह एक अपमान है। वहीं लेबर पार्टी और ग्रीन्स ने वन नेशन के एक राज्य नेता की संसद में बने रहने की योग्यता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने अतीत में नशीली दवाओं के इस्तेमाल और शराब पीकर गाड़ी चलाने से जुड़ी अपनी गलतियों को स्वीकार किया है। विक्टोरिया में वन नेशन के नेता और पेकनहैम सीट के उम्मीदवार वॉरेन पिकरिंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया कि उन्होंने 20 साल की उम्र में स्पीड, एक्सटेसी और मार्जुआना का इस्तेमाल किया था। उन्होंने 18 और 20 साल की उम्र में और करीब एक दशक बाद कम स्तर के शराब पीकर गाड़ी चलाने के मामलों में 3 बार अपना ड्राइविंग लाइसेंस गंवाने की बात भी मानी है। विक्टोरिया की डिप्टी प्रीमियर गैब्रियल विलियम्स ने पिकरिंग के खिलाफ लगे कुछ आरोपों को बहुत गंभीर बताया है। वहीं विक्टोरियन ग्रीन्स की नेता एलेन सैंडल ने कहा है कि वन नेशन उन वीजा धारकों को निर्वासित करने का वादा करती रही है जो कानून तोड़ते हैं, इसलिए इस मामले में पार्टी का रुख पाखंडपूर्ण प्रतीत होता है। वन नेशन के फेडरल सांसद बार्नबी जॉयस ने न्यूज 24 से कहा है कि इन स्वीकारक्तियों से वन नेशन की उम्मीदवार जांच प्रक्रिया को लेकर कोई चिंता पैदा नहीं होती। अब खबरें भारत से। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने बच्चों की सुरक्षा और बाल यौन शोषण सामग्री यानी CSAM को लेकर मेटा इंडिया के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू करने का फैसला किया है। आयोग ने मेटा इंडिया के प्रमुख अरुण श्रीनिवास को गुरुवार को पेश होने के लिए समन भेजा है। बताया जा रहा है कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर मेटा के जवाब से संतुष्ट नहीं होने के बाद यह कदम उठाया गया। मेटा का कहना है कि उसने बच्चों के शोषण से जुड़ी लाखों सामग्रियां और संदिग्ध अकाउंट हटाए हैं, लेकिन आयोग अब कंपनी की नीतियों और कार्रवाई की गहन जांच करेगा। इसी के साथ 9 सितंबर के मुख्य समाचार यहीं समाप्त होते हैं।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।